देवियों बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है सर, सुनो, अगले माह 10 से 15 जुलाई और 27 से 30 जुलाई तक हरिद्वार में दो साधना सत्संग हो रहे हैं। दिल्ली से जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लिख के लगी हुई है, आजकल अपनी सुविधा के अनुसार जाने से पहले देख लीजिएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे समय से पूर्व ही हरिद्वार पधारने की कृपा करें। धन्यवाद। लीला के अंतर्गत चर्चा चल रही है, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। सब कुछ इस संसार में जो घटित होता दिखाई देता है, अपने ऊपर औरों के ऊपर, ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, वह सब परमात्मा की ही इच्छा के अनुसार घटित हो रहा है, ऐसा दिखने लग जाए। यदि किसी साधु को ऐसी अनुभूति होने लग जाए तो वह परमात्मा की कृपा का पुण्य पात्र ही होगा, उसे परम शांति लाभ होगी, वह हर वक्त परमानंदित रहेगा, उससे किसी प्रकार की चिंता, उदासी, बेचैनी इत्यादि या भय नहीं हुआ करता। वह सब कुछ जो कुछ भी परमात्मा के घर से आता है उसे प्रसाद स्वीकार करता है, कैसा भी है उसके प्रति कभी कोई भी किंतु परंतु नहीं करता, ऐसा साधक हो जाता है। कलाप जी की सेवा में रावण की उदाहरण रखी गई थी। रावण की उदाहरण इसलिए रखी गई थी, अपने आप को महाशक्तिशाली, अपने आप को अति बलवान समझने वाला भी परमेश्वर के विधान से बाहर तो नहीं जा सकेगा। अगर ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी देर के लिए वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, अंततः उसे परमेश्वर के विधान में ही भुगतना पड़ेगा। विनाशकारी अंत, ऐसा अंत जैसा रावण का हुआ साधकों किसी शत्रु का भी ना हो। 100,000 परिवार के सदस्य मरते वक्त कोई अंत्येष्टि करने वाला नहीं था, कोई आग देने वाला नहीं था, ऐसा विनाशकारी अंत रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का। आज साधक शुरू फिर उसी की चर्चा आगे जारी रखते हैं। सबको पता है साधक शुरू कि रावण ने अपनी जिंदगी में प्रकृति के नियमों का अति उल्लंघन किया है, था शक्तिशाली, इसमें कोई शक नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्रह्मा जी श्रीलंका में उसके पास उसे वेद पढ़ाने के लिए आया करते। भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल के तो रावण के महल में उससे पूजा करवाने के लिए जाया करते। देवी देवता हमेशा उसके द्वार पर खड़े रहते, ग्रह इत्यादि आसपास मटकते रहते। अपने घर में उसने कोई कुक जैसे आप जी के घरों में होते हैं ऐसा कुक नहीं था, साक्षात अग्नि देवता कुकिंग का काम करते थे रावण के घर में, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति रावण। शनि देवता, दूसरे ग्रह इत्यादि सब उसके इशारों पर नाचते, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसा बलवान व्यक्ति रावण। बहुत कुछ करने में समर्थ था। प्रभु राम से अंत समय कहता है, मैं ये सब कुछ करने में सक्षम था लेकिन कल तक टालता रहा इसलिए मैं कर ना सका। मेरा बहुत हार्दिक इच्छा थी कि ये सागर जिस द्वारा लंका घिरी हुई है, खारा है, इसे मीठा बना दो, इसे दूध से भर दूं। पृथ्वी से लेके तो स्वर्ग तक एक सीढ़ी इस प्रकार की बना दूं जो चाहे उस पर चढ़ के जा सके, इत्यादि इत्यादि अनेक सारी बातें रावण कहता है। मैंने सोच रखी हुई थी, मैं करने में राम समर्थ था। प्रभु राम के सामने कह रहा है, मैं ये सब कुछ करने में समर्थ था, लेकिन कल कल तक टालता रहा और वह कल कभी नहीं आया। अब मैं ऐसे ही जा रहा हूं। इसी रावण ने साधकों, आज ब्रह्मा जी जिस वक्त उन्हें वेद पढ़ाने के लिए आए, उनसे रावण पूछता है, ब्रह्मा तो सबकी भाग्य लिखता है, मुझे एक बात बता, मेरी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, रावण जो लिख दिया वैसा ही होगा, उससे कसमस नहीं हो सकता। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिखता, मैं तेरे कर्मों के अनुसार और प्रभु राम की परम इच्छा के अनुसार लिखता हूं। ये कलम मेरी सिर्फ लिखती है, इच्छा परमात्मा की काम करती है, इसलिए मेरा उस उनकी इच्छा में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो यूं कहिएगा, एक जैसे अकाउंटेंट होता है, जैसे मुनीम होता है, ये काम करता हूं। जो कुछ उन्होंने लिखाया, एक सेक्रेटरी होता है, जो कुछ उन्होंने लिखवाया मैंने लिख दिया, और वह तेरे कर्मों के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार फैसला अपना सुनाते हैं, तद अनुसार प्रारब्ध बनती है। जितना कर जो लिखा गया वह लिखा गया, अब उसे कुछ कुछ नहीं, कोई टाल नहीं सकता, नहीं मैं टालूंगा। आग्रह किया, आग्रह जब किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सुन रावण, कौशल राज की राजकुमारी है कौशल्या, उसका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ से होगा। इन दोनों से जो ज्येष्ठ संतान उत्पन्न होगी वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक है, इतनी ही बात सुनने की देरी थी और रावण वहां से कौशल देश चल पड़े हैं। वहां जाके कौशल्या का अपहरण किया है। इस सीता का अपहरण कोई नई बात नहीं उसके लिए, उसने जिंदगी में ना जाने कितने अपहरण किए हैं। शास्त्र कहता है कि उन्होंने, रावण ने मां कौशल्या का अपहरण भी किया है। कौशल्या का अपहरण करके तो उन्हें एक बहुत बड़ी पेटी में बंद कर दिया। बंद करके सागर के किनारे आके एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था, उसे बुला के देखो कितना नियंत्रण था जीवों पर, प्राणियों पर, देवी देवताओं पर रावण का। उस बेटी को, एक मगरमच्छ को बुला के तो उसके मुख में डाल दी उस बेटी। वह बेटी मगरमच्छ के मुख में चली गई है, वह पुनः अपने सागर में चला गया है। एक से निपटारा हुआ, दूसरी ओर अयोध्या गया है। अयोध्या पहुंचता है, क्या देखता है जाके, राजा दशरथ की बारात वशिष्ठ जी सहित चल पड़ी हुई है। अतएव जहां वे पहुंचे हैं वहां एक इस प्रकार का तीर मारा कि तूफान आ गया। ऐसा तूफान जैसा कि कुछ भी किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता, ऐसा तूफान जिसमें किसी के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। अतएव रावण आज निश्चिंत हो गया है, मैंने उधर का भी काम कर दिया और इधर का भी काम कर दिया, अब देखूंगा इनके ज्येष्ठ संतान किस प्रकार पैदा होती है। मैंने परमात्मा का, विधाता का विधान बदल के रख दिया है। उधर साधकों, जिस बेटी को रावण ने मगरमच्छ के मुख में डाला था, किसी दूसरे मगरमच्छ ने, आखिर यही कहना पड़ेगा आप सबको, होता तो वही है जो परमात्मा की इच्छा हुआ करती है, उसकी इच्छा से प्रबलतर कुछ नहीं है, उसकी इच्छा प्रबलतम है, वह उसी के अनुसार सारे के सारे संबंध बनते हैं। उस मुख में पेटी डली हुई थी, मगरमच्छ का मुख, एक दूसरे मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण किया, अटैक किया, उसको लगा इसके मुख में क्या चीज है, मुझे लेनी चाहिए, आक्रमण किया, पेटी मुख से निकल गई। पेटी कहां जाके पहुंची है, उसी स्थान पर जहां बरात का ठहरा हुआ था, वह पेटी वहां जाके खुली और खुलने के बाद साधकजनों पेटी को खोला गया, कुशल्या बाहर निकलती है। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ का और कुशल्या का वही विवाह करवा दिया। एक वर्षन तो इस प्रकार का है, एक अन्य वर्षन भी है। कुछ भी हो, अर्थ तो लगभग एक जैसा ही है। रावण कौशल देश पहुंच के तो कुशल्या का अपहरण कर लिया है इसने। अपहरण करके एक निर्जन स्थान पर, कोई छोटा सा कमरा है, मकान, टूटा फूटा मकान कहिएगा, वहां पर कुशल्या को बंद कर दिया है और बाहर से ताला लगा दिया है, स्वयं चला गया है। राजा दशरथ साधकों बरात लेके, महर्षि विशिष्ट इत्यादि बरात लेके तो कौशल राज्य में पहुंच गए हैं। वहां कुशल्या नहीं है, विवाह का समय हो गया है, मुहूर्त इत्यादि जो कुछ भी निकला हुआ था वहां कुशल्या है नहीं। कोलाहल समझ गया। कुशल्या के पिता श्री ने उसी वक्त कुशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ राजा दशरथ का विवाह करवा दिया। तो सुमित्रा के साथ विवाह हुआ। अब बरात लेके लौट रहे हैं। राम जी की करती देखिएगा, उसके खेल देखिएगा, उसकी लीला कैसी अद्भुत है, कितनी एक्यूरेट है देखने की तो ये बात है। उसी स्थान पर बरात का पड़ाव पड़ा जहां पर कुशल्या जिस कमरे में बंद थी। सिसकियों की आवाज आई, रोने की आवाज आई। राजा दशरथ को लगा इसके भीतर कोई है, ताला तुड़वाया। ताला तुड़वाने के बाद देखा तो उसमें कुशल्या। सुमित्रा कुशल्या से मिली, एक दूसरे के गले लगे। राजा दशरथ से कहा, पतिदेव यही है मेरी बहन कुशल्या जिनके साथ आपका विवाह होना था। हाँ मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं, सुमित्रा तेरा साथ मेरा विवाह हो चुका हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह होना था, मैं दोनों को ही रखूंगा। दोनों के साथ वहीं पर कुशल्या का फिर विवाह हुआ। दोनों पत्नियों को लेके तो राजा दशरथ वापस अयोध्या पहुंचे हैं। कौन टाल सकता है परमात्मा की इच्छा को? कोई नहीं। इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध चल सके, चलना भी नहीं साथ चलो, बिल्कुल नहीं चलना। समझदारी इसी में ही है। एक साधक कैसा होना चाहिए? साधक वह जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार चल, अपनी इच्छा के अनुसार चलाने वाला साधक नहीं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला साधक, परमेश्वर को अपने पीछे चलाने वाला साधक नहीं। दुखी होगा और दुखी रहता है। हमारे दुख का कारण, हमारी चिंताओं का कारण, हमारी उदासी का कारण इसी प्रकार की अपेक्षाएं हैं। जैसी अपेक्षाएं हम संसार से रखते हैं, ऐसी अपेक्षाएं हम परमात्मा से भी रखते हैं। अतएव दुखी रहते हैं, उदास भयभीत रहते हैं, निराश भी प्रायः होते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा ही देवियों सज्जनों सर्वोपरि है। शेष चर्चा कल रविवार का दिन है, कल करेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। प्रश्न उठता है, जब परमात्मा की इच्छा ही सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, तो फिर हमारी ड्यूटी क्या है? जो राम न चाहे तू नचो जी, 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 राम न चाहे तू नचो जी, जो राम न चाहे तू नचो।
जोगी जो राम न जाए जो न 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 जोगी जो राम न जाए त्यों न जोगी।